प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हम सभी को बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं कि शिव शक्तियां विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन पांडव पांडव हैं, महावीर हैं, विश्व सेवाधारी हैं, शक्तियों को बहनों को आगे रखते हैं और खुद बैकबोन हैं। पर भाई जी, आप अपनी विशेषताओं के कारण पहले आपके महामंत्र को पक्का करते हुए स्वयं भी बहुत 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 विशेष हैं, बाबा के अनन्य रतन हैं। आप 50 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, 40 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप न केवल फतेहबाद सर्कल बल्कि विभिन्न स्थानों पर जाकर बहुत ही रमणीकता से प्रवृत्ति वालों की, कुमारों की, कुमारियों की क्लास करवाते हैं, उनमें नया उमंग, उत्साह व जोश भर देते हैं। आप पंजाब जोन के एजुकेशन विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, यज्ञ में अकाउंट्स की भली भांति देखभाल के लिए आपको ZAC के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हम भ्राता जी से सुनेंगे एकाग्रता की शक्ति। आदरणीय मदनलाल भाई जी,
ओम शांति। पिछले 4-5 दिन से आप शांतिवन के इस शुद्ध वातावरण में, शांतमय वातावरण में बहुत अनुभवी वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेज सुन रहे हैं। उनके अनुभव आपको अपने जीवन में पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए मददगार होंगे, ऐसी मुझे आशा भी है और विश्वास भी है। क्योंकि जो अनुभवी है, जिस मार्ग पर हम अब चल रहे हैं, उन्होंने वो रास्ता पार कर लिया है, तो उनके क्लासेस से एक तो मुझे ज्ञान और योग के बारे में अधिक स्पष्टता मिलती है, समझ आती है, और दूसरा मुझे मेरे पुरुषार्थ के मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है उसकी मोटिवेशन भी मिलती है। मैं तो एक साधारण सा BK ब्रह्मा कुमार हूँ, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से निकला हूँ, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। और जब मैं छोटा था, 20 साल मेरी उम्र भी नहीं थी, 19 साल थी, तो मैं कॉलेज में पढ़ते हुए जब मैं BSc का स्टूडेंट था, तो उस समय मुझे ये ज्ञान मिला और मैंने BSc करके और BEd करके और मैं सरकारी सर्विस में एज ए साइंस मास्टर मैंने नौकरी की। 28 वर्षों तक मैंने साइंस पढ़ाई है बच्चों को, मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई है मैंने। और इस ज्ञान मार्ग में भी मैं जब आगे बढ़ा, तो वो जो समय था, उस समय समाज में इस ज्ञान की इतनी मान्यता नहीं थी, लोग विरोध करते थे, परिवार वाले भी विरोध करते थे, बाहर वाले भी विरोध करते थे, जहां हम नौकरी करते वहां साथी कुलीक भी हमारा मजाक बनाते, मश्करियां करते थे हमारे से, वो समय हमने देखा है। और 10 वर्ष तक मैं ऐसे बाहर एज ए कुमार, जैसे कोई कमरा किराए पर लेकर, आप सब जानते हैं कि कुमार को कोई अंदर वाला मकान तो देता नहीं है, बार वाली बैठक किराए पर मिलती थी और कभी कहीं 2 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, वो उन कमरों में रहकर वहीं रहना है, वहीं उसी कमरे में खाना बनाना है। और आप सोचिए कि वो जीवन मैंने देखा है। उसके पश्चात जब मैं सेवा केंद्र पर आ गया, मुझे 40 साल हो गए हैं सेवा केंद्र पर भी रहते हुए, नौकरी भी की और फिर बाद में मैंने वीआरएस लेकर संपूर्ण रूप से सेवा में लग गया। मेरा ये बताने का अर्थ ये है कि कहने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में इस ज्ञान में चलना, उसका मैं अनुभवी हूं। क्योंकि मैं जिज्ञासु के रूप में भी रहा, फिर मैं सेंटर पर रहा, और ड्रामा देखो कैसा है कि मुझे सेंटर चलाने का भी ड्रामा अनुसार चांस मिला कि सेंटर पर बहन नहीं है, और उस सेंटर की बहन को बड़ी बहन ने अपने पास रख लिया और मुझे एक छोटा सेंटर दे दिया गया कि आप इसको चलाओ। तो उससे भी मुझे अनुभव मिला, क्योंकि मुझे जिज्ञासुओं को नजदीकी से देखने का मौका मिला कि माताओं की क्या समस्याएं हैं, ये जिज्ञासु घर में क्या क्या बातें फेस करते हैं, क्या दिखते हैं इनको, तो मुझे काफी नजदीकी से देखने का मौका मिला। क्योंकि मैं वहां एज ए टीचर उनको क्लास करवा रहा हूं, तो सभी जिज्ञासु मेरे से बात भी करेंगे, अपनी समस्याएं भी शेयर करेंगे, तो काफी कुछ मुझे नजदीकी से देखने को मिला। क्लास करवाने को तो मैं भी आपको कोई आदर्शवादी क्लास करा के चला जाऊं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स सुना दूं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान की बहुत 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 ज्ञान हमारे में आ चुका है। मैं कहता हूं कि ज्ञान का तो हम भंडार बन चुके हैं, ज्ञान के भंडार हैं। सारा YouTube भरा पड़ा है क्लासेज से, पर बात है प्रैक्टिकल चलने की, उस ज्ञान को जीवन में लाने की। उसमें हमारे को बहुत समझ चाहिए। तो जो मैंने आज विषय लिया कि एकाग्रता की क्या शक्ति है, कि मेरा जो पुरुषार्थ का मार्ग है, ये इसमें एकाग्रता का क्या महत्व है, ये मुझे समझने की जरूरत है। पुरुषार्थ हम सब कर रहे हैं, जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करके अगर हम कोई कार्य करते हैं, उसको एकाग्रता कहते हैं, उसमें हमारे को सहज सफलता मिलती है। अगर हमारी एकाग्रता नहीं है तो उस कार्य में मुझे जितनी सफलता चाहिए, मैं आशा करता हूं, वैसी सफलता मुझे प्राप्त होती नहीं है। आप देखेंगे कि सूर्य अरबों किलोवाट ऊर्जा धरती पर प्रेषित कर रहा है, अरबों किलोवाट ऊर्जा प्रेषित कर रहा है, लेकिन धूप में मैं एक छाते के नीचे खड़ा होकर उस ऊर्जा से बच सकता हूं। एक छाता कर लूं तो मैं उस छाते से क्या होऊंगा, बच जाऊंगा, मुझे वो गर्मी नहीं लगेगी। उसका कारण क्या है कि वो जो ऊर्जा है सूर्य की, वो फैली हुई है, वो बिखरी हुई है। और अगर आप देखेंगे, आजकल लेजर कटिंग आ गई है, काफी लोगों को पता होगा, कि आजकल लोहे को काटने के लिए लेजर कटिंग है, सीएनसी मशीनें हैं, उसमें कुछ वाट ऊर्जा जब उसको कंसंट्रेट कर लिया जाता है तो वो लोहे को भी क्या करती है, काट देती है। यानी कि अरबों किलोवाट ऊर्जा, उससे मैं एक छाते से बच सकता हूं, और कुछ वाट ऊर्जा जो कंसंट्रेटेड है उससे मैं लोहा भी क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। ये है कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का महत्व। जब हम अपने बेसिक कोर्स के जो चित्र हैं पुराने, उन चित्रों में जो योग का चित्र है उसमें वो एक लेंस वाला चित्र है कि लेंस सूर्य के सामने करते हैं तो वो कागज को क्या करता है, जला देता है। वो क्या चीज है कि सूर्य की ऊर्जा को वो लेंस क्या कर रहा है, एकाग्र कर रहा है। जब वो एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है तो वो कागज जल जाता है। बस वही बात हमारे को देखनी है कि मैं योग तो कर रहा हूं, मुरली भी सुन रहा हूं, परंतु मेरे में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो संस्कार मेरे बदलने चाहिए वो बदल नहीं रहे हैं। उस परिवर्तन की जो स्पीड है वो क्या है, कम है। आप देखेंगे कि कोई भी भाई बहन गलत विचार पैदा नहीं करना चाहता। कोई चाहेगा भी के कि मेरे को गंदे विचार आए, हम चाहते हैं कि हमारे को शुद्ध विचार आए, परंतु उसके बावजूद भी हमारे मन में तरह तरह के विचार, गंदे भी व्यर्थ भी, पैदा होते रहते हैं। अब ये विचारों का कौन सी फैक्ट्री है, कहां से आ रहे हैं ये जो जन्म जन्मांतर की जो मैल है, जो हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, विकारों के वश कर्म किए हैं, उसकी मैल हमारे सब कॉन्शियस में जमा है, गंदगी वहां जमा है। और वो गंदगी जहां होगी वहां मक्खी मच्छर ना आए, ये तो हो नहीं सकता है। तो उस गंदगी से हमारे अंदर तरह तरह के विचार पैदा होते हैं। चाहे हम मुरली सुन रहे हैं, चाहे हम योग लगा रहे हैं, तो अब उन विचारों को, जो गंदगी अंदर जमा है उसको साफ कैसे करें। गंदगी मेरे सब कॉन्शियस में है और मैं योग कर रहा हूं ऊपर ऊपर का, तो ऊपर ऊपर का जो मैं योग करूंगा तो वो मेरा कॉन्शियस तो थोड़ा बहुत साफ हो सकता है, परंतु मेरी अंदर वाली गंदगी वो साफ नहीं हो सकती है। आप ये समझ लो। इसलिए योग करना, बाबा से मन लगाना, बाबा से प्यार रखना, बाबा से संबंध बनाना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। हमें इसके लिए थोड़ी सी गंभीरता चाहिए, समझ चाहिए कि मैं बाबा से योग लगाने के लिए बैठा हूं और मेरा मन, मेरी बुद्धि कहीं और घूम रही है, टिकी नहीं रही है। अब जब तक मैं अपना मन ईश्वर में एकाग्र नहीं करूंगा, उसका संग मुझे नहीं मिलेगा, तो वो गंदगी साफ कैसे होगी। और मेरा मन एकाग्र नहीं होगा योग में, मेरा मन हल्का नहीं होगा, तो मुरली में भी मेरा मन नहीं लगेगा। आप देखेंगे ना, चलो योग में तो विचार चले लेकिन मुरली में भी चलते हैं। हमारे तो चलते हैं, पता नहीं आपके नहीं चलते हो, मुरली में भी मन कहीं कहीं और चक्कर काटने चला जाता है। सुन रहे हैं मुरली, आंखें भी खुली हैं, दीदी के सामने मुंह भी हिला रहे हैं, लग भी ऐसे रहा है कि बहुत जागरूक बैठा है ये, बहुत जागरूक है ये। उसके बावजूद भी हमारा मन बुद्धि कहीं और, दुकान पे, कभी घर में, कभी कहीं, कभी कहीं, क्योंकि मन तो पिछू लघु है। ये तो क्या करता है कि बुद्धि के हवाई जहाज पर बैठकर बुद्धि इसको जहां ले जाए वे उसके साथ चल पड़ता है और उसका आनंद लेने लगता है। तो चल रही है मुरली और मेरा मन लग नहीं रहा, मन इधर उधर घूम रहा है, कोई पॉइंट समझ में आ गई, कोई नहीं आई। मैं सच्चाई कह रहा हूं, ये यानी कि ग्राउंड लेवल पर यही बात है और कुछ इससे ज्यादा नहीं है। और अब मान लीजिए मेरी मुरली में मेरे को कोई मेरा बुद्धि कंसंट्रेट ही नहीं हो रही है, तो मुरली धारण कैसे होगी? अच्छा, योग में बैठा हूं तो मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि कब सफेद लाइट हो। और आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि हमारी कॉन्शियस के अंदर ये बात बैठ गई है कि क्लास में जा रहे हैं, अगर उनसे पूछो भी कहां जा रहे हो, कह मुरली क्लास में जा रहा हूं, योग की क्लास में जा रहा हूं, ये कोई बीके नहीं कहता, ये कहते हैं कि मुरली की क्लास में जा रहा हूं। उनके हमारे कॉन्शियस में ये बैठ गया है, फटाफट भागेंगे भाई मुरली शुरू तो नहीं होगी, और जो आधे घंटे से योग चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, आप भाई जो योग में बैठा नहीं, बुद्धि को टिकाया नहीं, बुद्धि को शांत नहीं किया, डिस्टर्ब है बुद्धि, और वो कहीं बिजनेस से आकर, दुकान से आकर फटाफट मुरली ले लिखने लग जाएगा, उसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे को ये बताइए। पहले देखिए, सबसे पहले वैल्यू किस चीज की है क्लास में? क्लास में वैल्यू है योग की, क्योंकि जो ब्राह्मण परिवार के का संग मिल रहा है, देखो योग में हमारे को क्या चाहिए, संग चाहिए, ब्राह्मण परिवार का संगठन चाहिए, उसका वातावरण चाहिए। मुरली तो फिर भी आप घर पर लोगे, तो ये वातावरण कैसे मिलेगा? जो आश्रम का स्वच्छ वातावरण है, आगे दीदी बैठकर योग करवा रही है और सारे ब्राह्मण हैं, संगठन है, उसका बल मिलता है, उसके वाइब्रेशंस हमारे को मिलते हैं। तो जैसे हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, अब अकेली लकड़ी तो सूखी हो तो भी नहीं जलती, और अगर लकड़ियां इकट्ठी हों तो हो सकता है गीली लकड़ी का भी धक्का लग जाता है, तो चार सूखी लकड़ियां एक गीली लकड़ी है बीच में, तो वो भी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। भाई योग नहीं लग रहा, बाकियों का लग रहा है, उसके वातावरण से भी हमारा योग लगने लग जाता है। तो हम इस चीज के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे, बस मुरली के टाइम क्लास हो गया, बहन जी के आते हैं क्लास आश्रम में, आगे पूछेंगे क्लास कितने बजे होती है, अब उनसे आके जो नया आएगा, क्लास कितने बजे होती है, वो क्लास क्या समझ रहा है कि मुरली कितने बजे सुनाई जाती है, योग होता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, सेवाएं बढ़ रही हैं, परंतु अगर हम अपनी अवस्था को देखें, पुराने बीकेस को देखें, जहां तक मैं नजदीकी से देखता हूं कि कोई रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं है, और ना ही हम अपना अवलोकन करना चाह रहे हैं, ना ही हम अपना अवलोकन करना चाह रहे हैं। जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो मेरी अंदर जो विशेषताएं हैं, क्षमताएं हैं, वो बाहर नहीं आएंगी। इसलिए जब हम छोटे थे ना, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उन दिनों में जब पेपरों के दिन आते तो हम क्या करते, खेतों में चले जाते, खेतों, क्योंकि गांव के हम लोग हैं, और खेतों में चले जाते और ये लक्ष्य रख के जाते भाई ये प्रस्ताव ये ऐसे तो वहां से याद करके ही आऊंगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एकांत है, और एकांत में बैठकर मन को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते बुद्धि को, ताकि ये चीज मुझे याद हो जाए। तो जहां एकाग्रता है वहां सफलता होगी, अगर एकाग्रता नहीं है तो सफलता नहीं होगी, उतनी कम होगी। अब अगर हम एकाग्रता की बात करते हैं, अगर आप इसके अंदर इसको, कभी कभी हम आश्रम में क्लास करने जाते हैं, कभी कभी हमारा मन लगेगा, अच्छा लगेगा, योग भी अच्छा लगेगा, मुरली में भी मजा आएगा, फिर ये कहेंगे आज बाबा ने मुरली बहुत अच्छी चलाई। बाबा तो रोज मुरली अच्छी चलाता है, वो बात तो मेरे मन की है, मेरे मन की है, मेरा टेस्ट क्या है। तो अब जो जब मेरी एकाग्रता अच्छी होगी तो मुझे मुरली भी अच्छी लगती है, योग भी अच्छा लगता है, मजा भी आता है। अब इस एकाग्रता को रोक कौन रहा है, क्यों नहीं होती है, चाहते हम सब है। पहली बात कि मैं जब घर से चलता हूं क्लास में जाने के लिए तो मुझे अपने कॉन्शियस को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं क्लास में जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, योग करने जा रहा हूं, बाबा से मिलन मनाने जा रहा हूं। उसमें ड्रेस का बहुत महत्व है, ड्रेस का बहुत महत्व है। स्कूल में बच्चा जाता है तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है, जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन लेता है ना तो उसके कॉन्शियस लेवल में क्या होता है, ये चेंज आ जाती है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कोई स्कूल है, छोटा है बड़ा है, सबकी अपनी अपनी क्या है, यूनिफॉर्म है। एक मिलिट्री वाला जब अपनी ड्यूटी पर जाता है, एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर जाता है तो क्या कर लेता है, अपनी ड्रेस पहन लेता है। वो ड्रेस पहनने का पीछे अगर रीजन ढूंढेंगे, वो हमारे अंदर अंतर मन को वो काम करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो हम भाई बहनों को शायद ऐसा लगता है कि बहनें तो ऐसे कहती रहती हैं, वो भी सही ड्रेस पहन के आया करो, सही ड्रेस में आओ। बाबा का जो ये क्लास है, अगर आप करके देखो, आप ड्रेस पहनकर, बैज लगाकर, डायरी पेन ले जाकर आप क्लास में जाइए, आप वो वाला, और जब अचानक ही ऐसे ही बस उठे और भाग लिए, वो नहीं। नहा धो के तैयार होकर, जितनी देर के लिए हम तैयार होंगे तो तब तक मेरी कॉन्शियस में ये बात रहेगी कि मैं क्लास के लिए तैयार हो रहा हूं, क्लास के लिए जा रहा हूं। वो चीज मुझे क्या करती है, क्या करेगी, मेरे को मदद करेगी, मुझे आगे क्लास में वो चीज मुरली को ग्रहण करने में मेरी क्या करेगी, मदद करेगी। आजकल एक और आ गया है, हां योग में आते हैं, वो आते हैं 5 मिनट पहले, भाई दीदी टोके ना, बस लाल लाइट है, खुश हो जाते हैं, भाई लाल लाइट चल रही है, अभी मैं टाइम पर आ गया। मतलब लाल लाइट के अंदर वो क्लास में आ गया ना, तो वो समझता है कि मैं क्या हो गया हूं, समय पर आ गया जी, बस आ गया था जी मैं तो क्लास में। ये तो वो काम है, देखो योग है स्नान और मुरली है भोजन। एक तो व्यक्ति अच्छी तरह स्नान करके भोजन करे, एक आजकल के जो नौजवान बच्चे करते हैं, मुंह धोया, थोड़ा सेंट ऐसे से लगा के, और जैसे ड्राई क्लीन करते हैं और अपना जाप, चलो भाई चल पड़े, वो नहाते नहीं। आजकल ये समस्या है, बहुत सारे नौजवान जो कॉलेजों में जा रहे हैं और में जा रहे हैं, स्नान सुन नहीं कुछ नहीं करते, बस खाली ड्राई क्लीन कर लिया, मुंह धो लिया, मुंह में क्रीम क्रूम लगा लिया, कोई सेंट लगा लिया, कपड़े बदल लिए, चलो भाई। हमारे भी वही स्थिति है, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, हम तो ड्राई क्लीन ही नहीं हुए पूरे, नहाना तो बहुत दूर की बात है, तो तैयार ही नहीं हुए मुरली सुनने के लिए, ये समझ तो चाहिए ना। ऐसे अंधाधुंध चल रहे हैं, अंधाधुंध, आप सोचो योग मैंने कितनी देर किया उसका कोई मायना नहीं है। योग की गहराई मापी जाती है ना कि लंबाई मापी जाती है कि मैंने चार घंटे बैठा रहा, चार घंटे बैठा बुद्धि दुकान में घूमती रही, खेत में घूमती रही, वो बैठा क्या है? इससे अच्छा था वो खेत का ही काम कर लेता, वही अच्छा था, कोई कोई काम तो निभाता, ये क्या है? तो इसलिए योग की तो गहराई है कि मैं कितनी देर बैठा, कितनी देर मेरी मन बुद्धि बाबा में एकाग्र हुई। इस चीज के महत्व को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, कोई कोई लोग ये कहते हैं कि जी मेरी दुकान है, ऐसी है, मेरे बंधन हैं, मेरा बिजनेस इस टाइप का है कि मेरी मतलब है बुद्धि यहां बैठकर भी उधर जाती है। अब इसके लिए मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप इसको बात को समझोगे कि अगर हम पुरुषार्थ करें तो कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी वातावरण है, अगर मैं चाहूं तो उस वातावरण से क्या हो सकता हूं, न्यारा हो सकता हूं। कहते हैं कि ये एक इतिहास में है, मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया का एक कोई मनोवैज्ञानिक था विक्टर, उसके परिवार को नाजी यानी सेना ने, यानी जर्मनी की सेना ने हिरासत में ले लिया, अंदर बंद कर दिया। तो उस मनोवैज्ञानिक की पत्नी, उसकी मां, उसके बच्चे, वो यातनाएं दे दे के मार दिए गए। अब वो रह गया अकेला, उसको भी बहुत यातनाएं देते थे। कहते हैं कि एक दिन वो नंगा बैठा था, वैसे एक छोटा कपड़ा पहना हुआ और जेल में बैठा है। उसको कहते हैं ऐसी एक जागृति आई जिसके नाम पर उसने एक किताब लिखी कि लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम, उसका किताब का नाम था द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम, उसने उस किताब लिखी उसके ऊपर। उसको यह जागृति आई कि ये जेल का वातावरण, ये जेल की यातनाएं, ये तो मेरे को बाहर से बंधन डाल सकती हैं, मेरे आंतरिक मन को ये नहीं बांध सकती। ये जागृति आ गई उसको, तो वो क्या करने लगा कि जब वो अकेला बैठता, बैठा था तो अकेला ही, वो क्या करता, एक ऐसा चित्र बनाता मन में कि मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है, मैं अपने विद्यार्थियों को कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और उनके साथ पिकनिक कर रहा हूं। वो ऐसी ऐसी कल्पना करता था कि मैं स्वतंत्र हूं। उसको याद ही भूल जाता कि मेरी कोई जेल में हूं, मैं कहां हूं, नहीं, उसको लगता कि मेरे को छोड़ दिया गया है, मुझे आजाद कर दिया गया है और मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, उनके साथ घूम रहा हूं, परिवार के साथ रह रहा हूं। ऐसे करके वो ऐसे सोचता रहता। धीरे धीरे उसकी इस सोच ने ऐसा परिवर्तन लाया कि जो वहां पहरेदार थे वो उसको मदद करने लगे। धीरे धीरे दो तीन सालों में, कहते तीन सालों में बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो अब उसने कहा कि वो ये चेक करता था कि ये बाहर का वातावरण मेरे अंदर की स्वतंत्रता को कितना प्रभावित करता है कि नहीं करता है। उसने ये कोशिश करता रहा कि मुझे ये प्रभावित ना करे। तो इसलिए वो आखिर आजाद हो गया। अब इससे क्या अर्थ निकलता है, अगर हम अपने ज्ञान के हिसाब से सोचें तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि हमारा कैसा भी वातावरण है, कैसी भी परिस्थितियों में रह रहे हैं, कैसे ही परिवार में रह रहे हैं, मेरे साथ वाले साथी कैसे हैं, स्वभाव उनका कर्कश है या प्यार वाला है, कैसा भी है, तो उस समय मैं अगर प्रैक्टिस करूं तो अपने आप को फ्री कर सकता हूं, अपने आप को क्या कर सकता हूं, फरीक कर सकता हूं, और ये फ्रीडम हमारी एकाग्रता के लिए, ये फ्रीडम हमारी एकाग्रता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये फ्रीडम हमारी एकाग्रता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब तक मैंने अपने आप को फ्री नहीं किया, तब तक मैं योग लगा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं, क्योंकि कर्मों ने, मेरे विकारों ने, मेरे संस्कारों ने मुझे क्या कर रखा है, बांध रखा है। मैं बंधा हुआ हूं, बंधन है मेरे अंदर बहुत सारे, उन बंधनों से मैं मुक्त कैसे होऊंगा? और जब तक हम बंधनों पर विचार नहीं करें, उनसे मुक्त नहीं हूं, आप सोचिए ना तो मेरा मुरली में मन लगेगा, ना मेरा कोई योग में मन लगने वाला है, और ना ही मेरे अंदर कोई विशेष परिवर्तन आने वाला है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में अगर समझ से पुरुषार्थ करेंगे, ये बेसमझी का रास्ता नहीं है, ये ढोल ढमक्कों का रास्ता नहीं है। भाई ढोल बजा लिए, गीत गा लिया, नाच लिए, रास कर ली, बस हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला। करीब जितने मर्जी ढोल बजा लो, कुछ नहीं होने। जब तक हम सीरियसली इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे, ना हमें मजा आएगा, ना हमारे संस्कार बदलेंगे, और ना हमारा कोई इतना बड़ा हमारे को प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि हम इस पढ़ाई, देखिए ये कोई छोटा काम है क्या कि मैं आत्मा, हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हम अल्टीमेटली अपने लक्ष्य को चेक करें कि हम यहां ब्रह्मा कुमार क्यों बने, ये आश्रम में, बीके आश्रम में क्या करने आते हैं, क्या करने आते हैं? जो मैं सोचता हूं कि जो हमारा बीके आश्रम में आना, वो ये है कि मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध करना है, मुझे मेरे को ओरिजिनल रूप में वापस आना है, जो मेरी आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं उसमें मुझे वापस आना है, शुद्ध करना है, मुझे प्योर करना है मेरी आत्मा को। तो ये कोई छोटा काम है क्या? इससे बड़ी तो कोई पढ़ाई नहीं, इससे बड़ा कोई सिलेबस नहीं, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं, और उसको हम इतना सीरियस ले ही नहीं रहे, उसको हम इतना सीरियस ले ही नहीं रहे। हम इतने बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हमें ये भी नहीं एहसास है, हमें ये भी एहसास नहीं है कि बाबा नई दुनिया बनाने आया है, और हम बाबा के क्या हैं, नई दुनिया बनाने में क्या हैं, मददगार हैं, ये हमें एहसास नहीं है। अगर हमारे को ये एहसास हो, फिर हम इस पढ़ाई में क्या लेंगे, थोड़ा सीरियसली इस पढ़ाई को लेंगे, गंभीरता से लेंगे। ये योग का विषय, ये मुरली का विषय, ज्ञान का विषय, ये बहुत समझ का विषय है। आप अगर आप एक चीज देखो, एक हवाई जहाज जब उड़ता है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो उड़ने से पहले उसकी पूर्व तैयारी की जाती है। ऐसे नहीं कि खड़ा है चल उड़ गया, उसकी तैयारी की जाती है। उसमें ईंधन भी भरेंगे, उसके हर पुर्जे को भी देखेंगे, हर चीज चेक करेंगे, और जब ईंधन भरने के बाद, पहले वो हवाई जहाज कहां चलता है, कहां चलता है? पहले वो जमीन पर चलता है, काफी दूर जमीन पर चलकर फिर उड़ता है। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सीधा उड़ना चाहते हैं, शॉर्टकट, भाई सीधा उड़ जाओ। जब तक मेरी ज्ञान की भूमि, मेरी बुद्धि ज्ञान युक्त नहीं है, मैं बैठकर अगर ज्ञान का कोई पॉइंट लेकर कोई मनन चिंतन मेरे अंदर नहीं है, तो आप उड़ नहीं सकते। अगर उड़ भी गए, चलो मन लग भी गया बाबा के पास, वो वैसे होगा जैसे आप दिवाली पर वो हवाई चलाते हैं ना, सुर बस ऊपर गई और साथ के साथ क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये सुर वाले हैं, जे एक सेकंड को योग लग भी गया और हवाई वो गई हवाई ऊपर और बाद नहीं, क्योंकि उसमें बारूद तो है ही नहीं, जितना का बारूद था वो तो जल गया। तो आप भाई पहले कम से कम उठने से पहले बारूद तो भर लो उसमें, है कोई तैयारी तो कर लो, बिना तैयारी के उठ रहे। तो इसलिए बहुत समझ हमारे को चाहिए। हम किसी को, आप देखिए मैं ये सम्मान की बात कर रहा था ना, मैंने एक जगह पहले भी सुनाया था कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति कनेडी था और वो जो उनका रिसर्च सेंटर है नासा, वो उसके विजिट पर गया, तो उनकी विदेशी कल्चर है, वो सारे स्टाफ से मिल रहा था, सब लाइनों में खड़े हैं, सबकी इंट्रोडक्शन ले रहा है, अच्छा आप यहां पर क्या करते हैं, क्या काम है आपका, कोई कह रहा है कि मैं वैज्ञानिक हूं, ये रिसर्च कर रहा हूं, कोई कहता है कुछ हूं, कोई कुछ है, सब स्टाफ है। तो ला एक बीच में स्वीपर खड़ा था जो झाड़ू लगाता है वहां नासा में, वो स्वीपर का नंबर आया, जी आप यहां क्या करते हैं और आपका यहां पर, बोले जी और क्या इन दिनों में कौन सा काम चल रहा है, वो बोला जी हम नया सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब वो स्वीपर बोलता है कि हम नया सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब वो तो स्वीपर है पर उसके सम्मान में क्या है, छोटा है पर उसके सम्मान में क्या है कि जो भी काम इस नासा में हो रहा है उसका मैं भी एक क्या हूं, हिस्सा हूं। अगर मैं सफाई नहीं करूंगा ये वैज्ञानिक क्या करेंगे, गंद में बैठ के रिसर्च करेंगे, हैं? परंतु हमारे को छोटे छोटे बीके वो सोचते हैं कि नई दुनिया लाने का काम तो दादियों का है, दीदियों का है, बड़े भाइयों का है, हमारा थोड़ी है। अरे भाई तुम भी पुर्जा हो उसके, ये मशीन छोटे से पुर्जे के बिना भी रुक जाए। इतना सम्मान हमारे अंदर चाहिए, हरेक के अंदर, कि मैं बाबा का बच्चा स्वर्ग लाने के लिए क्या हूं, निमित्त हूं, मुझे स्वर्ग लाना है, मैं उसके निमित्त हूं। ये समझ चाहिए। इस समझ के बिना जब तक ये सम्मान जागृत नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको एक बात बता दूं कि इस ईश्वरीय कार्य में मुझे दिल से सेवा करनी है, दिखावे की नहीं। एक सिद्धांत सदा बुद्धि में रखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब जहां खाली स्थान है वहां मैं हूं, जहां खाली स्थान है यानी जो काम की आश्रम पर जरूरत है बहन जी को, उस समय मैं तैयार खड़ा हूं, बहन जी मुझे बताओ, तब तो है मजा। फिल इन द ब्लैंक्स, कोई मुझे उस खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। मुझे दिखावा नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई प्रोग्राम आश्रम में होगा, जब कोई दरी बिछाने का समय है, कुर्सियां लगाने का समय है, स्टेज को संभालने का समय है, सजाने का समय है, उस समय तो वो नदारत है, गुम है, वो तो गुम है। और जब फोटो खींचने का टाइम आएगा, उद्घाटन हो रहा है, रिबन कट रहा है, वो सबसे पहले सफेद कपड़े पहन के मोटा बैज लगा के वो सबसे पहले फोटो में खींच खड़ा है। अब देखने वाला तो यही कहेगा यही ब्रह्मा कुमार है जी, ये असली है जी, ये असली तो यही है इनका। और जो बेचारा वो दरिया साफ कर रहा है उसके तो कपड़े मैले हो गए, तो स्नान करने गया तो तैयार होने गया है, इतने में रिबन कट गया। अब ये सोचिए तो भाग्य किसका बनना है, वो जो दरी साफ करके गया है, ये नहीं कि जो इसका फोटो खींचा गया बड़ा मोटा बैज लगा रखा है और वो बन गया। ये हम कई बार ऐसा करते दिखावा। देखिए मैं तो एक जानता हूं, क्योंकि मैं जिज्ञासु भी रहा हूं और आश्रम भी चलाया और सेंटर भी रहता हूं, सरकार की नौकरी भी करी है, और नौकरी में भी दिन देखे हैं, ये भी देखे हैं। हम नौकरी करते थे ना, तो मान लीजिए स्कूल में बैठे हैं, अब दो पीरियड हैं पढ़ा लिए, तीन पढ़ा लिए, उसके बाद खाली है, खाली बैठ गए। अब जो टीचर और हैं वो तो कोई पकोड़े खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई चाय पी रहे हैं। अब ना हम जलेबी खाते, ना पकोड़े खाते, ना चाय पीते, हम बैठे हैं। अब कुर्सी पर बैठे हैं, कभी आंख लग भी जाए, वो पता क्या करते, क्या बात है, रात को सोते नहीं हो। मैंने कहा आप जलेबी खा सकते हो, चाय पी सकते हो, लड्डू खा सकते हो, हम सो भी नहीं सकते हैं। सो भी नहीं सकते, वो दिन भी देखे हैं। और आश्रम में देखो, मैंने पढ़ाया भी है, जो स्टूडेंट अपना प्लेटफार्म हमारे को बीके को कभी खराब नहीं करना चाहिए। जिस क्लास, जिस आश्रम में मैं क्लास कर रहा हूं, वहां मुझे अपनी दीदी के साथ संबंध क्या रखने हैं, अच्छे रखने हैं। अगर आपके संबंध अपनी दीदी से क्या हो गए, बिगड़ गए, तो आपका योग लगेगा नहीं। आप बैठोगे और विचार वो दूसरे चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है। होशियार बच्चे का स्कूल में, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ाई है, तो साइंस टीचर रहा हूं, तो साइंस थोड़ी मुश्किल होती है, तो होशियार बच्चे जो होते हैं, जो साइंस में होशियार होते हैं, तो होशियार बच्चे का टीचर के साथ बहुत प्यार होता है। जिस अगर उसका टीचर के साथ नजदीकी पना है, तो वो चीज उसको ज्यादा समझ में आएगी। जिस टीचर से उसका प्यार नहीं है, उसके नजदीकी नहीं है, वो सब्जेक्ट उसके समझ में भी नहीं आता है। तो मुझे मेरे प्लेटफार्म को खराब नहीं करना। मैं तो अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं छोटा था क्लास करने लगा, मान लो मेरी दीदी के साथ कोई खटपट होगी, उस दिन मेरा योग नहीं लगेगा। मैं सोचता था क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अब ये समझ में धीरे धीरे आने लगा कि तूने उधर तो न्यू कर रखा है, तो फिर तेरे योग कहां से लगेगा, इधर तो ऐसे। और अगर मिलाएंगे नहीं, अच्छा कोई कोई भाई बहन मैंने ये भी देखे, घर जाकर अपने बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने अपनी दीदियों की बातें करते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि मेरी लड़की ज्ञान में चल जाए, हैं, और मेरा लड़का ज्ञान में चल जाए, मेरा पति ज्ञान में चल जाए। किधर का ज्ञान में चलेगा भाई, ये बताओ। बात तो तुम टीचरों की गलानी कर रहे हो घर में जाकर, वो ज्ञान में भी नहीं आता है। तो ये समझ चाहिए, मैं बीके हूं, मुझे कैसे चलना है, अपने प्लेटफार्म को मुझे ठीक कैसे रखना है, ये समझ चाहिए। अच्छा कोई कोई माताएं ऐसी आ जाती हैं, भाई साहब मेरे पति के लिए योग लगाओ, वो आने लग जाए आश्रम में, बहुत आती है, है? भाई साहब आप ऐसा योग का दान दो मेरे पति को, वो क्लास में आने लग जाए। आप ये समझ अपने आप को होनी चाहिए कि एक माता को कोई आश्रम में छोड़ने आते था, उसका घर वाला, वो आता बाहर से स्कूटर पर, स्कूटर रोका, माता अंदर आ गई, वो अपना चला गया। मैं उस माता को कहा भी तेरा पति तेरे को रोज छोड़ने आता है, हैं? ये इधर आता नहीं अंदर, क्या बात है? कि जी मैं तो बहुत कहती हूँ, आता ही नहीं। मैं भी एक दो बार उसको जैसे बाहर खड़ा हूं तो मिल गया, मैं कहा भाई साहब आओ, आप भी आके सुनो, कोर्स करो। क्या आऊंगा जी, आऊंगा आऊंगा। अच्छा कुछ समय के बाद वो आने लग गया, आने लगा, तो मैं उससे पूछा भाई अब पहले तो आया नहीं, अब आप आने लग गए। वो बोला भाई जी सच्चाई क्या बताऊं, कि मेरी युगल ये इधर आ रही है ओम शांति में, इधर ओम शांति, घर में ओम अशांति, यहाँ ओम शांति और घर में क्या है ओम अशांति। कोई इसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत ही मैं देखूं तो मैं आऊंगा ना। कहते आप थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा है तो मैं आने लग गया जी। और घर में वही बात, मैं मजाक कर रहा हूं, घर में वही बात, मेरे को चप्पल नहीं दिलाई, मेरे को कपड़े नहीं दिलाए, आप घुमाने नहीं ले गए। अरे वो आदतें तो वही के वही है, तो फिर वो कैसे ज्ञान में चलेगा बताओ, डिमांड वही के वही है, तो फिर बहने क्या करेंगी। तो इसलिए आपको ये समझ से ज्ञान में चलना है, ये ज्ञान समझ का है, ये खेल तमाशा नहीं है। मेरा भाव ये है कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका घर है, बाल बच्चे हैं, बच्चों को पालना है। हम इस क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं रोज कहता हूं कि क्लासमेट का संबंध केवल पढ़ाई तक सीमित होता है। मान लो एक क्लास में दो बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, वो क्लासमेट हैं। तो हम तो जब छोटे थे तो अगर हमारे किसी दिन हम स्कूल में नहीं गए तो हम उसके घर जाते और इसलिए जाते कि भी आज टीचर ने क्या होमवर्क दिया है वो पता करके आऊं। हम यहां पर क्लास में, बीके क्लास में एक दूसरे से संबंध बनाने नहीं आए हैं। वो 20 संबंध छोड़े और इधर 100 बना लिए, वो लौकिक वाले छोड़े और इधर क्या बना दिया हमने, 100 संबंध बना लिए। हमारा ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। लोग देख रहे हैं हमारे को, बहु रूपये ना बनो, ना धोखा दो, ना अपने को दो ना किसी को दो। बहु रूपये क्लास में आएंगे सफेद कपड़े पहने हुए, बैज लगाए हुए, मैं कह बाहर देख लूं बाजार में तो पहचान ही नहीं आता भाई यही वही माता है, वो लाल पीले पहचान ही नहीं आती। अब ये बहु रूपये स्वरूप लोग देख रहे हैं आपको, वो कैसे मानेंगे कि भी इनको ज्ञान है, पवित्रता का रास्ते मार्ग पर ये चल रहे हैं। हम उनकी तरह ना कपड़े पहन सकते हैं, चलो सफेद ना पहनो, कम से कम लाइट रंग के कपड़े तो पहनो कि लाल पीले पहन लें। कोई कोई माताएं इधर कुछ बाहर कुछ, भोग लेंगी ना, रुमाल लपेट लेंगे ऊपर हाथ में, भाई साहब देखे ना कदे वो हाथ रंगे हुए, मुंह में दी लगी हुई है पर हाथ में क्या। हम बीके हैं, समझदार हैं, हमें अपने स्वरूप को ठीक रखना होगा, सेवा करनी है हमने, बाबा के कार्य में मददगार हैं हम। इसलिए ज्ञान तो सबको बहुत है लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल जो स्वरूप है ना उसमें बहुत बहुत परिवर्तन की हमें जरूरत है। मजा आपको भी आएगा अगर सही ढंग से पुरुषार्थ करोगे, आनंद आएगा, क्लास की रौनक भी बढ़ेगी, क्लास का वातावरण भी चेंज होगा और दीदी को भी क्या होगा, मजा आने लगेगा और आपका आपका घर में भी परिवर्तन आएगा। अगर हम इस तरह अंधाधुंध चलेंगे, आंखें बंद करके ज्ञान में चलेंगे ना, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ना इस खुशफहमी में रहो कि भाई जी हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, आप ना रहो खुशफहमी में ऐसे। हम अपने आप को चेक करें, अपने निश्चय को चेक करें कि मुझे कितना निश्चय है बाबा से, बाबा के ज्ञान में कितना निश्चय है, मैं बाबा के लिए सच्चे मन से क्या कर रही हूं। अब आज के समय में मैं सच्चाई कह रहा हूं कि हम जो ज्ञान भी दे रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, स्वयं का एक्सपोजर कर रहे हैं। बाबा का एक्सपोजर कम और स्वयं का एक्सपोजर ज्यादा, ये चेक करते हैं प्रोग्राम के बाद कि मेरी फोटो कैसी आई है, कैसे लग रहा हूं मैं, मेरी शक्ल पूरी अच्छी तरह नजर नहीं आई। अरे भाई तुम प्रोग्राम कर रहे हो कि अपना एक्सपोजर कर रहे हो। मैं सत्य बताऊं कि ये कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का बहुत सारा समय अपने को अच्छा दिखाने में व्यतीत कर देता है, करना चाहिए अच्छा बनाने में, और कर किस में देता है, अच्छा दिखाने में कि मैं अच्छा नजर आऊं। मैं अच्छा हूं नहीं, पर मैं चाहता ये हूं कि बाहर से लोग मेरे को, लोगों को मैं अच्छा दिखाई दूं। तो हमें वो जरूरत नहीं है, देखने वाला ऊपर बैठा है, हिसाब किताब हमारा ऊपर है, इन्होंने हमारा कोई वहां पर साथ नहीं देना है, इनके इनका बही खाता नहीं देखा जाएगा कि इन्होंने आपको अच्छा समझा कि बुरा समझा, वो तो ऊपर वाला जाने। इसलिए ना हमें किसी के दिखावे में आने की जरूरत है, शांति से पुरुषार्थ करेंगे, आराम से रहेंगे। जितना मैं कहता हूं जो गांव की माताएं हैं ना, इनका पद बहुत बहुत ऊंचा है, जिनको 3000 रुपए हरियाणा में पेंशन मिलती है। मैंने देखा है बहुत सारी माताएं उसी 3000 में से अपने यज्ञ में भी करती हैं, मधुबन के लिए भी इकट्ठा करती हैं, किराया इकट्ठा करती हैं और आराम से रहती हैं। उनका जो पुरुषार्थ है, उनका जो बाबा से प्यार है सच्चे दिल का, उसका हाँ कोई मुकाबला नहीं है। उनका पद बहुत बहुत, ऐसे नहीं बाबा महिमा करता माताओं की, बूढ़ी माताओं को ऐसे नहीं महिमा करता, उनको केवल बाबा 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 और कुछ नहीं पता। बहुत सारी गीता पाठशालाएं मैंने देखी है, मैं जाता आता रहता हूं, मैं माताओं को ऐसे नजदीकी से देखता हूं, पता चलता है कि ये किस ढंग से, मैं कोशिश करता हूं उसको एक्सप्लोर करने की, पूछता हूं तेरे घर में कौन कौन है, कैसे करते हो, घर में क्या करते हो, तो पता चलता है क्योंकि मैं इसी में से निकला हूं, मैंने वो जीवन में देखा है। मैं अपने देखो बाबा मदद करता है, बाबा मदद। जब मैं छोटा था तो जब मेरी जिस स्कूल में नौकरी थी ना, वो फतेहाबाद से 7 किलोमीटर दूर था। वो जमाना था साइकिल का, तो मैं साइकिल पर जाता। अब सुबह 7 बजे स्कूल लगता है, अब उधर मुरली सुन के जाना है, अब रोटी बनाएगा कौन, तो ब्रेड खा लेना है दूध के साथ, ब्रेड खा के मुरली सुनी और चल पड़े। अब साइकिल चला के जाना है, 1:30 बजे छुट्टी हुई, 1:30 बजे छुट्टी हुई तो आधा पौना घंटा साइकिल में आते आते लग जाएगी, 2:15-2:30 बज गए गर्मी में। अब उस समय पेट पीठ को लग जाए और वहां कौन से मेरे लिए कोई पराठे बना के बैठा है, है? तो फिर मुझे आके आटा गूंदना है और फिर उसको बनाना है। तो ऐसे करते करते मेरा शरीर कमजोर होने लगा। मैं बाबा की मदद की बात बताता हूं, तो मैं मॉर्निंग में एक दिन योग में बैठे हुए मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये कब तक चलेगा, मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, लोग भी टोकने लगे हैं, भी क्या हो गया है। तो सच बताऊं बाबा ने ऐसा संकल्प दिया कि तू अपना खाना वहां क्यों नहीं बनाता स्कूल में। अब मैं साइंस मास्टर था, साइंस रूम तो होता ही है, और तो मैंने क्या किया, आधी छुट्टी से पहले अपने 2 पीरियड खाली कर लिए, एक आधी छुट्टी के बाद 1 पीरियड खाली कर लिया, क्योंकि टाइम टेबल भी मैंने बनाना होता था, तो टाइम टेबल मेरे हाथ में, मेरा अपना पीरियड पहले खाली कर लिया, एक पीछे वाला खाली कर लिया, बच्चे बर्तन साफ कर देते और अपना वहां स्टोव होता ही है साइंस रूम में, अपना खाना बनाया खाया और फिर वह आराम से वहां चाय पी, आराम से आराम करता था। तो मैं फिर मैं वहां रेस्ट करके आता था, दोपहर को क्या जरूरत है मुझे भागने की, मैं वहीं रेस्ट कर लूंगा पेड़ के नीचे आराम से ठंडी छाया में, और फिर मैं आराम से आता। सच बताता हूं ये मदद बाबा ने दी, उसने संकल्प दिया बाबा ने। बाबा का मदद क्या मना, बाबा का संकल्प ही तो है ना। उसने मेरी बहुत मदद की, शरीर भी ठीक हो गया और खाना भी गर्म खाने लगा। तो इसलिए मैं जब कुमारों को देखता हूं ना, मैं बहने भी बैठी हैं, प्लीज प्लीज कुमारों का ध्यान रखो, इनका जीवन में इस ब्राह्मण इस कल्चर में इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुमारों के लिए कोई भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, सारी विपरीत ही विपरीत हैं। वैसे तो इनको इसलिए महावीर कहा गया है कि जो विपरीत को अनुकूल बनाए, विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल करे वो महावीर है। वैसे तो ये महावीर है, लेकिन फिर भी मैं बहनों को इनको इतना जरूर कहूंगा, प्लीज इनका ध्यान दीजिए, क्योंकि तो जिस लाइन से हम निकल कर आए हैं इनके सामने बहुत दिक्कत है, इनको लोग टोकते हैं, तंग करते हैं, परिवार वाले शादी के लिए और के लिए परेशानी पैदा करते हैं। और ऐसे में कुमार को थोड़ा सा स्नेह मिल जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाए, चलो कभी सब्जी मिल गई रोटी दो बना लेगा, कोई ना कोई मदद इनको हमें करनी चाहिए। नहीं तो उस पेड़ का क्या फायदा है बढ़ेगा जो किसी को छाया नहीं दे सकता, किसी को फल नहीं दे सकता, उस पेड़ का क्या करोगे। मेरे को अगर कोई कुमार सच्ची बताऊं मेरे से बात करे ना, मुझे अंदर बहुत स्नेह है, प्यार है कुमारों के लिए, क्योंकि वो जीवन की तकलीफ मैंने देखी है, ग्राउंड लेवल पर देखी है। वो ठीक है कि आज चलो ड्रामा में मेरा पार्ट था कि मैं इधर आ गया सेंटर पर, भागने की कोशिश तो मैंने भी बहुत की, भी चला जाऊं। शुरू शुरू में जब तंग होता था ना, सोचता था क्लास में जाना ही नहीं, छोड़ दिया ज्ञान बस, और फिर वो बाबा ने नहीं छोड़ा या ड्रामा में पार्ट था कि मैं चलो कामयाब हो गया। और ऐसे कितने कुमार हमारे साथ लगे, कितने चले गए और ऐसे ऐसे चले गए, बस पूछो नहीं आप। और एक मजाक की बात सुना के अब पूरा करूंगा कि मेरे साथ एक कुमार था, हम दोनों इकट्ठे खाना बनाते थे और उसकी माँ भी थी, तो वो बुजुर्ग थी, उसको भी खाना खिला देते, कभी वो खाना बनाता कभी मैं बनाता। और वो उसकी माँ की डेथ होगी, शरीर छोड़ गई वो, तो वो बोला जी आप मधुबन जा रहे हो, मेरी माँ का भोग लगाना, तो ये पैसे लो। वो पैसे दे दिए, मैं आ गया मधुबन। उस समय तो पांडव भवन ही था और कुछ था नहीं, तो मैं आके उसका भोग लगवाया सब। मैं जब वापस गया तो पता चला कि वो कुमार तो घोड़ी चढ़ गया, वो तो घोड़ी चढ़ गया थी। वो जिस दिन उनका 13वां वो था लास्ट उठाला, उठाला में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, भाई इतना बड़ा मकान कौन संभालेगा, कौन सफाई करेगा, कौन झाड़ा पूछा करेगा, तो तेरी उसका रिश्ता कर दिया। और उसको अब मैं गया, मैं कहा यार इसको चलो दो चार दिन तो शर्म का मारा, मेरे को मिला नहीं। फिर जैसे मिला तो बाबा भूले नहीं, अब शादी हो गई, लेकिन मैं हम घूमते थे शहर पहले भी करते थे, तो वो मेरे से रोज पूछता बाबा ने आज क्या कहा नया, बता देता मुरलीम बाबा ने ये कहा है। फिर कभी आज बाबा ने क्या कहा, मैं कहा ये कर तो इन्हें शादी लिए, भोग तो ये बेकार रहा है, हैं ये बाबा पता नहीं क्यों पूछता है सारा दिन। तो मैं एक दिन ऐसे कह दिया, मैं कहा छोड़ बाबा को, तू तो अपनी बाबी की सुनना यार, जो तू बाबी ले आए हैं उसकी सुन, मैं हमारे किसे लिए पीछे पड़ रहा है, वो बाबी की सुन, मैं कहा वो बाबी जो तू ले आया है ना उसकी सुन। तो इसलिए भाई इन बातों के साथ आप ध्यान रखो कि भी हमें बचना है, कुमारों को भी बचाना है और इस बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।
बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार, सुहाना सच गाएगा, सुहाना सच गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, सब सधे मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है, जगत जीत है, माया से हारे हार, माया से हारे हार, शरण जग गाएगा,
मन बदल जाएगा,
शरण जग गाएगा,
मन बदल जाएगा।
मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो